अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सब्वसाहूणं। आठवां काव्य है जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः समृत्युः किं नमोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा। यतः माने जिसके कारण जीर्णं देहादिकं, जीर्ण शीर्ण शरीर आदि माने जो बहुत पुराने हो गए ना ऐसे शरीर आदि, जिसके कारण सर्वम ये सारी चीजें जितनी चीजें अपने पास है, आज हैं यहां पर इस जीवन में, वो सब नूतनम जायते, अगले जन्म में सब नई नई चीजें ही अपने सामने होंगी, यहां का कोई पुरानी चीज अपने पास नहीं रहने वाली। तो जिसकी कृपा से सब नया प्राप्त हो रहा है, समृत्यु की मोदाय न, क्या वह समाधि मरण हर्ष का कारण नहीं होगा? किसके लिए? सताम, सत्पुरुषों के लिए, क्योंकि दुर्जनों के लिए तो मृत्यु संकट का कारण है, मरे और दुर्गति में पहुंचे, मुसीबत। लेकिन सत्पुरुषों के लिए क्या वह मृत्यु मोदाय न हर्ष के लिए नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। यथा सातोत्थिति, जैसे पुण्य का उदय सबके लिए हर्ष का कारण होता है, उसी प्रकार मृत्यु भी सत्पुरुषों के लिए हर्ष का कारण होती है कि चलो इतना लंबा जीवन मैंने व्यतीत किया, व्रतों का पालन किया, और आज अब ये मेरी परीक्षा की घड़ी आई है, ये फाइनल एग्जामिनेशन है, बिल्कुल अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसमें अगर मैं मेरिट में आता हूं, मेरिट में कब आऊंगा? जब मैं समता भाव से शरीर छोड़ूंगा, आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा, आनंद के साथ साधना पूर्वक निराकुलता पूर्वक शरीर को छोड़ने पर पूरे अंक मिलते हैं। जीर्ण शीर्ण देहादिक सारे जिससे नूतन हो जाते, उसी मृत्यु से मोही प्राणी ना जाने क्यों घबराते। पुण्य कर्म का उदय मनुज को, ज्यों प्रमोद से भरता है, देह छूटना सत्पुरुषों को, त्यों आनंदित करता है। सुखं दुःखं सदा वेत्ति, देहस्थश्च स्वयं व्रजेत। देखो तीन स्वराघात है, देहस्थश्च स्वयं व्रजेत, लगातार तीन स्वराघात, देहस्थश्च स्वयं व्रजेत, मृत्यु भीतिस्तदा कस्य, जायते परमार्थतः। देहस्थ, देहस्थ माने शरीर में रहने वाला, कौन रहने वाला? जीव। सदा हमेशा सुखम दुखम वेत्ति, सुख दुख का अनुभव करता रहता है। देखो शरीर को सुख दुख नहीं होता, स्पष्ट है इसमें। सुख दुख किसको होता है? जीव को होता है। कई बार ऐसा कहते हैं ना संलेखना के समय या कभी भी किसी को आप समझाने जाते हैं, कोई बीमार है, अरे ये बीमारी ये जो तकलीफ है तुमको थोड़ी हो रही है, आत्मा को कुछ नहीं होता। बोले आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, ये तकलीफ तो शरीर को है। ये मिथ्या वचन है। तकलीफ अगर शरीर को हो जाए तो शरीर पुद्गल कहां से रहेगा? पुद्गल को तकलीफ होती है? पुद्गल तो अजीव है। ये सुख और दुख का वेदन कौन सा द्रव्य कर सकता है? छह द्रव्यों में से सिर्फ जीव द्रव्य, बाकी किसी द्रव्य में वो ताकत नहीं है जो सुख और दुख का वेदन कर सके। जान भी नहीं सकते कोई द्रव्य, सुख दुख क्या वस्तु है उसको कोई द्रव्य जान भी नहीं सकता। भोगना तो दूर की बात, लेकिन जीव सदा सुख और दुख का अनुभव करता है। और च च माने और, स्वयं व्रजेत, जब उम्र पूरी हो जाती है तो जीव स्वयं शरीर छोड़ करके व्रजेत चला जाता है। बहुत मर्म की बात बतला रहे हैं, ध्यान से सुनना। जीव स्वयं शरीर छोड़ करके चला जाता है समय पूर्ण होने पर। तो परमार्थतः, फिर आप परमार्थ से विचार करके देखो, जब कोई धक्का मारकर बाहर निकालता है तब तकलीफ होनी चाहिए, या खुद जब निकल जाते हैं तब तकलीफ होती है? धक्का मारकर जब निकाला जाता तब तकलीफ होती है, या फिर कभी कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है और निकलना पड़ता है, तब तक भूकंप आ जाए तो फिर घर छोड़ के भागना पड़ता है, तब तकलीफ होती है घर छोड़ने में। लेकिन जब खुद छोड़ करके जा रहे हो, समय पूर्ण हो गया, पता सर लेखना, अब देखो आप अपने टाइम मत देखो अभी वो समय नहीं आया है। तो समय पूर्ण होने का मतलब जब अपनी आयु पूर्ण हो गई, जीव खुद अपने शरीर को छोड़कर जा रहा है। जैसे आपको पता है कि यहां पर इस धर्मशाला में इतने दिन मुझे रुकना है, समय पूर्ण हो जाता है तो आप अपने आप वहां से निकल जाते हैं, सामान लेकर के चले जाते हैं आप। अब यहां से रत्नत्रय और फिर जो भी आराधना की है उससे संचित पुण्य को लेकर के जीव निकल रहा है। जब स्वयं निकल रहा है तो परमार्थतः सच्चाई में विचार करके देखो, तदा मृत्यु भीति कस्य जायते, फिर मरने से डर किसको होना चाहिए? जो खुद छोड़ करके जा रहा है शरीर को, क्या उसको मरने से डर होना चाहिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। डर उसको होता है जिसको हकाल दिया जाता है, फिर कोई किसी दुर्घटनावश जिसको निकलना पड़ता है, लेकिन जो खुद जा रहा है उसको डर कैसा? देह निवासी चेतन अपने, सुख दुख को देखे जाने, और किसी दिन इसी देह से स्वयं निकलने की ठाने, स्वेच्छा से जाने वाला क्या, कभी कहीं घबराता है, नसल लेखना धारी नर को, यम कंपित कर पाता है। ये भावात्मक अनुवाद करके रखा है हमने, पद्यानुवाद, आसानी से वो भाव अपने अंदर आ जाए, उस प्रकार के शब्द रखे हैं। फिर डर किसको लगता है मरने से? एक श्लोक और ले लेते हैं, आखिरी दसवां काव्य है। संसारासक्त चित्तानाम मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणाम मूदायते पुनः सूपि ज्ञान वैराग्यवासिनाम। संसार आसक्त चित्तानाम नृणाम मृत्युर भीत्यै भवेत। देखो जिनका चित्त संसार में आसक्त है, जिनको संसार में ही आसक्ति है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्युर भीत्यै भवेत, मृत्यु डर का कारण बन सकती है। लेकिन सोपि वह मृत्यु भी ज्ञान वैराग्य वासिनाम नृणाम पुनः मोदायते, ज्ञान और वैराग्य में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए मोदायते हर्ष का कारण बन जाती है। जो संसार में आसक्त हैं उनके लिए तो मृत्यु डरावनी है, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य में निवास करते हैं उनके लिए मृत्यु डर का कारण तो नहीं, हर्ष का कारण होती है। देखो ज्ञान में निवास करने का मतलब क्या है कि वो मृत्यु को क्या समझता है ज्ञानी जीव, वस्त्र परिवर्तन मात्र। क्या वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में एक श्लोक आता है भगवत गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर मनुष्य दूसरे नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि गृह्णाति पराणि देही। उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये वस्त्र परिवर्तन जैसी प्रक्रिया है, इसमें घबराना अज्ञानता है, क्योंकि कपड़े जब नए पहनता कोई तो ऐसे कांपता है क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, नए कपड़े तो खुशी से पहनता है व्यक्ति। इसी प्रकार पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर को अगर कोई धारण कर रहा है तो वहां डर कैसा, ये ज्ञान की बात हो गई। फिर वैराग्यवासी क्या है, वैराग्यवासी सोचता है कि शरीर छूट रहा है, ऐसा अपवित्र शरीर, ऐसा घृणित शरीर जिसके संपर्क मात्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र बन जाती है, वो शरीर अगर छूट रहा है तो फिर घबराने का सवाल ही नहीं है, तो खुशी की बात है। आपके पैर में कीचड़ लग जाए और कोई पानी डाले तो आपको डर लगता है? कीचड़ धोते समय कीचड़ अलग हो जाता है तब घबराहट होती है क्या? नहीं, खुशी होती है कि चलो पैर साफ हो गया। इसी प्रकार आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया वो अशुचि है, ऐसे अशुचि शरीर को छोड़ते समय वैरागी को डर कैसा, उसको खुशी होती है कि चलो एक गंदगी छूटी, एक अशुद्ध चीज जो मेरे साथ लगी थी उससे मुझे छुटकारा मिला। छोड़ न पाते विषय सुखों को, जब छूटे तब डरते हैं, जो संसार आसक्त बने वे डरते डरते मरते हैं, लेकिन ज्ञान विराग निवासी अनासक्त होते जाते, और अंत में हर्षित मन हो
मृत्यु महोत्सव को पाते।
फिर इसके बाद 11वें काव्य में कहते हैं, पुराधीशो यदा याति सुकृत्यस्य बुभुत्सया तदासौ वार्यते केन प्रपंचैः पांचभौतिकैः। जब पुराधीश, पुराधीश का अर्थ है आत्मा, जब आत्मा यानी शरीर रूपी नगर का अधीश राजा, जब सुकृत्यस्य बुभुत्सया, मैंने आखिर पुण्य कमाया जीवन में तो कितना कमाया, कैसा कमाया, इसको जानने की इच्छा से, अब शरीर में रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुण्य कैसा कमाया, शरीर छोड़ेगा अगले भव में जाएगा तो पता चलेगा, जब पुण्य का फल मिलेगा तब पता चलेगा कि ऐसा ऐसा पुण्य था मेरा उस जन्म का। तो पुण्य को जानने की इच्छा से जब याति प्रयाण करता है, शरीर छोड़ करके निकल जाता है, तदा तब असौ केन वार्यते, उसको कौन रोक सकता है। जब जीव शरीर को छोड़ करके निकलता है तब उसको कौन रोक सकता है, चाहे वो कोई भी उपाय क्यों न कर ले। कैसे उपाय, तो पांच भौतिक ही प्रपंच ही, पंचभूत संबंधी जो प्रपंच होते हैं उनके माध्यम से कई प्रकार की चिकित्साएं होती है ना, तो मिट्टी की चिकित्सा करते हैं, अब मिट्टी की पट्टियां लगा लो लेकिन फिर भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। वो जीव जब छोड़ करके जाएगा शरीर को तो वो मिट्टी की पट्टी से रुकने वाला नहीं है। ऑक्सीजन लगा दो, एक तो मिट्टी की पट्टी पृथ्वी का प्रपंच कर दिया, चलो उससे नहीं बचा, ऑक्सीजन लगा दिया, वायु का प्रपंच हो गया, उससे भी बचने वाला नहीं है। गर्मी का मौसम हो एसी में रख दो तो भी मरने से बचने वाला नहीं है। और जल का कोई उपचार कर लो, सेलाइन चढ़ा दो, बचने वाला नहीं है। इसी प्रकार अग्नि का कोई उपचार करो, सिकाई करो, इंफ्रारेड किरणों से सिकाई कर लो, अथवा जो और अलग अलग प्रकार के सिकाई करने के वो आते हैं ना साधन, बहुत प्रकार के आजकल तो साधन आ गए हैं सिकाई के लिए, तो हर प्रकार की सिकाई करके देख लो तो भी बचने वाला नहीं है। खुले आकाश के नीचे रख दो तो भी बचने वाला नहीं है। तो पांच भौतिक ही प्रपंच ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूत संबंधी प्रपंच कर लो तो भी बचने वाला नहीं है। पूजा दान पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, दीन दुखी जीवों पर करुणा, विधि है पुण्य उपार्जन की। अपना अर्जित पुण्य देखने, जब चेतन तन से जाता, पंचभूत के प्रपंच से तब, कोई रोक नहीं पाता। मृत्यु काले सतां दुःखं, यद् भवेद् व्याधि संभवं, देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। समाधि भावना में एक पंक्ति आती है, नहीं वेदना सतावें,
पर अगर सतावे तो यहां पर मृत्यु महोत्सव पाठ में लिखा है कि मृत्यु काले, मृत्यु के काल में, संलेखना के समय यत दुखम व्याधि संभवम सताम भवेत, जो व्याधियों से उत्पन्न होने वाला कोई दुख सत्पुरुषों को हो जाता है, संलेखना के समय कोई व्याधि हो जाए, मान लो कफ का प्रकोप हो जाए या फिर पित्त भड़क जाए या वात संबंधी व्याधि हो जाए, जोड़ों में बहुत तेज दर्द उठने लग जाए, तो व्याधि से उत्पन्न होने वाला कोई दुख अगर संलेखना में होता है तो फिर यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि मन्ये, मैं समझता हूं कि वो दुख तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि देह मुंह विनाश आया, वो तुम्हारे शरीर के मुंह को नष्ट करने के लिए दुख पैदा हो रहा है। दुख होगा तो तुम्हारा शरीर संबंधी मोह टूटेगा, सुख होगा तो फिर वो मोह भंग नहीं होगा। और फिर एक बात और कह दी, च शिव सुखाय, वो मोक्ष सुख के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि तकलीफ के बिना सुख नहीं होता। तो ये जो कष्ट हो रहा है तुम्हें मृत्यु के समय, वो मोक्ष सुख के लिए कारणभूत है, इसलिए इस दुख से घबराना नहीं। मैं तो मानू यह पीड़ा ही, देह मोह को दूर करे, समता का अवसर प्रदान कर, शिव सुख से भरपूर करे। अब आगे के काव्यों का स्वाध्याय फिर आगे किया जाएगा, क्योंकि अपने पास अभी समय है ऐसा लग रहा है कुछ। इसके बाद आगे का काव्य है, ज्ञानी नो मृत संगाय, 13वां काव्य, ज्ञानी नो मृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन, आम कुंभस्य लोकेस्मिन् भवेत् पाक विधिर यथा। जैसे कच्चे घड़े को अग्नि में तपाना पड़ता है, पता है आपको ये जानकारी होगी कि घड़ा जो होता है उसको कुमार बनाता है मिट्टी से, और मिट्टी से, गीली मिट्टी से घड़ा बनाता है, फिर उसको आग पर तपाना पड़ता है, और अगर वो बना बनाया घड़ा है उसमें अगर पानी भर दे तो घड़ा नष्ट हो जाएगा, पानी उसमें रुकेगा नहीं। उसी प्रकार मोक्ष का जो अमृत है वो जब तक मृत्यु रूपी भट्टी में तप करके जीव समता पूर्वक बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक उसमें वो अमृत उस जीव रूपी घड़े में भरा नहीं जा सकता। तो जब घड़ा अग्नि में तप जाता, लाल हो जाता है, तब उसमें पानी भरो तो वो पानी ठंडा भी होता है, और फिर उस शीतल पानी का ग्रीष्म काल में लोग बड़े आनंद के साथ सेवन भी करते हैं। इसी प्रकार जब जीव रत्नत्रय की साधना करते करते अंत में संलेखना पूर्वक अपने प्राण छोड़ता है, तब उसको मृत्यु की भट्टी से भी तप करके गुजरना पड़ता है, तब जा करके उसकी आत्मा रूपी घट, उसका आत्मा रूपी घट उस मोक्ष रूपी अमृत को धारण कर सकता। अभी तो कच्चा घड़ा है, अभी मोक्ष का अमृत अपने अंदर नहीं समा सकता, और ज्यादा मोक्ष मोक्ष की बात करोगे तो फिर आचरण शून्य जीवन से आपको सदगति नहीं मिलने वाली। कच्चा घड़ा है, इसमें मोक्ष का अमृत, मोक्ष मोक्ष उसको भरोगे तो फिर ये पूरा फूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए देखो आप जो ज्यादा चर्चा करते हैं उनके जीवन में अर्चा नहीं दिखती। तो सबका संतुलन अपेक्षित है। इसका पद्यानुवाद देखिए, काव्य नंबर 13 है, ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा, फिर जलधारी बन पाता, मृत्यु परीक्षा देकर ज्ञानी, त्यों ही शिवपुर को जाता। शीतलता धारी हो ना हो, तो आवश्यक है तपना, मृत्यु ताप से कातर जन को, मोक्ष सदा रहता सपना। एक छोटी सी बात और कह रहे हैं 14वें काव्य में, यत् फलम प्राप्यते सद्भिर् व्रतायास विडम्बनात्, तत् फलं सुख साध्यं स्यान् मृत्यु काले समाधिना। अब जो फल सत्पुरुष व्रतों की आराधना करके, जीवन भर व्रतों का पालन करके, बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी व्रतों की रक्षा करके प्राप्त करते हैं, वही फल, वही कर्म निर्जरा रूपी फल अगर मृत्यु के काल में संलेखना धारण कर ले कोई जीव, यानी जीवन भर अव्रती रहा हो, भावना भाई हो कि संलेखना होनी चाहिए, और मृत्यु के काल में अगर उसका पुरुषार्थ जागृत हो जाए और वो व्रत धारण करके संलेखनाधारी हो जाए, तो फिर समाधि पूर्वक यानी धर्म ध्यान के साथ यदि वो अपना शरीर छोड़ता है, तो जीवन भर व्रत पालन करने का जो फल है कर्म निर्जरा, वही कर्म निर्जरा समाधि पूर्वक मरण का वरण करने वाले को भी प्राप्त हो जाती है। सज्जन और विवेकी मानव, पाप पंक से डरते हैं, अतः व्रतों को धारण करके, उनका पालन करते हैं। इस उद्यम का जो फल होता, उसको वह नर भी पाता, जो बड़ भागी मरण काल में, सत समाधि को अपनाता। अब संलेखना मरण को जिसने स्वीकार किया है, समाधि मरण करने जा रहा है, वो अगर आखिरी दिन उपवास कर ले, यानी जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो रही उस दिन अगर उसका उपवास हो, तब तो ग्रंथकर्ता कहते हैं कि सोने में सुगंध आ गई, अद्भुत बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। जिस दिन मरण हो रहा है उस दिन अगर उपवास हो, तब तो कहना ही क्या, उसकी किन शब्दों में तारीफ की जाए। अनार्थ शांतिमान मर्त्यो न तिर्यग नापि नारकः, धर्म्यध्यानी पुरो मर्त्यो नशनी त्वमरीश्वरः। अनार्थ है, जो मृत्यु के समय अनार्थ है यानी पीड़ित नहीं है, शांत है, शांतिमान, शांति से संपन्न है, ऐसा संलेखनाधारी क्षपक या साधक मर्त्यो न तिर्यग्नापि नारको न, मर करके न तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, न नरक जाता है और न ही मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता है। धर्मध्यानी मर्त्य, धर्मध्यान पूर्वक जो मनुष्य अनशनी अनशन तप के साथ प्राण छोड़ता है, यानी उपवास पूर्वक जो मनुष्य धर्म ध्यान करते हुए काया को विसर्जित करता है, वह तो पुरो अगले भव में अमरेश्वर देवों का इंद्र बन जाता है। जो नर शांत निराकुल होता, मर कर कष्ट नहीं पाता, पशु गति में वह जन्म न लेता, नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट जान कर, जलाहार भी जो छोड़े, धर्म ध्यान करके वह नाता, स्वयं इंद्र पद से जोड़े, बस आज इन 15 काव्यों तक अपना स्वाध्याय रहेगा, क्योंकि आज अपन समय और स्थान से कुछ आगे निकल गए थे, चर्चाएं इतनी चली गई थी आगे। आनंद आया, हमें तो बहुत आनंद आया, आपको जैसा लगा।